राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन है वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन है वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिविर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौरताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री 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 प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 22 अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट और श्लोक संख्या है 9। मेरे पीछे बोले नैव लक्षयते लोको लोकान पर्यटतो पियान यथा सर्व दृशम सर्व आत्मानं येष हेतवः नैव लक्षयते लोको लोकान पर्यटतो पियान यथा सर्व दृशम सर्व आत्मानं येष हेतवः नैव लक्षयते लोको लोकान पर्यटतो पियान यथा सर्व दृशम सर्व आत्मानं येष हेतवः। बोलिए देखिए ये जो अवग्रह का चिन्ह है प्रथम पंक्ति में दूसरी पंक्ति में भी है एस की तरह जो बना है इसमें आ है लेकिन आ नहीं बोलते हैं पर्यटतोपी पर्यटतोपी यश हेतवा आ है लेकिन आ बोलते नहीं। ठीक है आगे बोलिए वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए ना नहीं एव इस प्रकार लक्षयते देख सकते हैं लोकहा लोग लोकान समस्त लोकों में पर्यटतः विचरण करते अपि यद्यपि यान जिसको ये होना चाहिए जिनको ये बहुवचन है जिनको यथा जिस तरह सर्वदृशम परमात्मा सर्वे सबों में आत्मानम प्रत्येक प्राणी के भीतर ये जो अस्य इस जगत के हेतवः कारण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए,
पृथु महाराज ने
आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते, जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। इस श्लोक को फिर से समझेंगे, शब्द किस प्रकार से हैं। न एव लक्षयते लोको, न का मतलब नहीं, एव का मतलब निश्चित रूप से। लक्षयते माने देख पाते हैं, लोको माने लोग, तो लोग नहीं देख पाते, निश्चित रूप से लोग नहीं देख पाते। लोकान परिणतो अपि, अपि का मतलब भी, लोकों में पर्यटन करते हुए भी, यान का मतलब जिनको, यान बहुवचन है, यम एक वचन है और यान बहुवचन है, तो यान बहुवचन किन के लिए आया है, चार कुमारों के लिए यान। तो जिनको लोग नहीं देख पाते, लोको माने लोग, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए यहाँ पर है कि मनुष्य लोग नहीं देख पाते जिनको, जबकि वे लोकों में पर्यटन करते हैं, तो लोक मतलब विभिन्न लोकों में पर्यटन करते हैं लेकिन तो भी लोग नहीं देख पाते। तो एक लोक का मतलब है व्यक्ति, बहुत अलग अलग व्यक्ति, लोक लोको, और लोकान दूसरा जो लोकान है वो है अलग अलग लोक। लोक शब्द का जो है मतलब दो अर्थ है, तो यहाँ पर लोको का मतलब है लोग, व्यक्ति, बहुत व्यक्ति लोग नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं देख पाते हैं, और यहाँ दूसरा लोकान अलग अलग लोकों में पर्यटन करते हुए भी, तो वो ये जो है पर्यटन करते हैं, सभी लोगों में पर्यटन करते हैं लेकिन उन लोकों के जो निवासी लोग हैं वो नहीं देख पाते, यान जिनको नहीं देख पाते। यथा, अब यथा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, यथा जिस प्रकार, सर्वदृशम सर्व आत्मानम, सर्वदृशम आत्मानम, तो सर्वदृष्टा आत्मा को जिस प्रकार से कोई नहीं देख पाता, सर्वदृशम आत्मानम है ना, ये किसके लिए है, उस आत्मा के लिए जो सर्वदृष्टा है। तो आपके शरीर में, हर शरीर में दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा, तो सर्वदृष्टा आत्मा अगर कहा जाए तो जीवात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा ही है। यथा सर्वदृशम आत्मानम सर्व, और यहाँ सर्व का मतलब सर्वे, सर्वे माने सब जीव, जितने भी जीव हैं प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा है, और वो परमात्मा कैसे हैं, सर्वदृष्टा आत्मा है, वो सब कुछ देखते हैं है ना। लेकिन सर्वे सभी जीव नहीं देख पाते, परमात्मा को नहीं देख पाते, फिर ये अस्य हेतवः, और वे लोग भी नहीं देख पाते जो इस जगत के हेतु हैं। हेतु का मतलब यहाँ प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है ब्रह्मा और शिव, इस जगत के हेतु ब्रह्मा और शिव भी हैं, ब्रह्मा जी इस जगत के हेतु हैं, यानी निर्माण, निर्माण के हेतु हैं, इस जगत का निर्माण कार्य के हेतु ब्रह्मा जी हैं, और शिव जी इस जगत के हेतु हैं, संहार के हेतु हैं, इस जगत के संहार के हेतु हैं, इन पालन के हेतु विष्णु जी, ये नहीं, प्रभुपाद ने उनको शामिल नहीं किया है, हालांकि जगत के हेतु वो भी हैं पालन के हेतु, ये उनको शामिल नहीं किया प्रभुपाद ने, क्यों, क्योंकि वही विष्णु ही तो परमात्मा है, यही विष्णु तो परमात्मा है जो पालन कर रहे हैं, इसलिए विष्णु को छोड़ करके इस जगत के हेतवा शब्द में जो है प्रभुपाद ने दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो सृष्टि के हेतु हैं और संहार के हेतु हैं, उनका उनका जिक्र किया है लेकिन पालन के हेतु का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वही विष्णु परमात्मा है जिनको कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ हम इस श्लोक का इस प्रकार से अर्थ समझे हैं, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है मुह्यंत्यत सूर्यः, मुह्यंत्यत सूर्यः श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक है, सबसे पहले स्कंद का सबसे पहले अध्याय का सबसे पहला श्लोक है मोहयंति सूर्य, यानी जिनको जानने में सूर्य सूर्य का मतलब बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी भी शामिल हैं, शंकर जी भी शामिल हैं, है ना, और फिर किसके बाद कही जाए, फिर कौन शामिल नहीं है, सभी शामिल हैं। ब्रह्मा उससे भी अगर मोहित होते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो फिर कौन रह गया जो जान सकता है। तो मोहयंति यत् सूर्यः, है ना। तो प्रभुपद जो है यहाँ इस के समर्थन में श्रीमद् भागवत के सबसे पहले श्लोक का उद्धरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रारंभ में कहा गया है मोहयंति यत् सूर्यः, कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण इस श्लोक में थे, अब प्रभुपद श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं कि जब एक तो परमात्मा है, परमात्मा की गतिविधि कोई नहीं जान पाते हैं, लेकिन कृष्ण तो प्रकट हुए, परमात्मा को तो कोई देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो प्रकट हुए। तो जब प्रकट लीला कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाल लिखते हैं जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा। इंद्र ने गलत समझने की आदत है भगवान तक को गलत समझा तो हमें, हमारी और आपकी क्या बात है कि हमें और आपको कोई गलत समझे तो क्या कहा जाए, क्या आश्चर्य। कृष्ण को भी गलत समझा है, इंद्र ने गलत समझा, कृष्ण को गलत समझा है, क्या गलत समझा है कि एक छोटा सा बालक हो करके और ये इन सब बड़े बड़े गोपों को जो है उपदेश देता है, और ये बड़े बड़े गोप भी इतने मूर्ख हैं कि छोटे से बालक की बात को मान करके मेरी पूजा बंद कर दी। तो कृष्ण को भी गलत समझा इंद्र ने, ब्रह्मा जी को भी गलत समझा, नहीं क्षमा करिए, ब्रह्मा जी ने भी गलत समझा कृष्ण को। कैसे गलत समझा कि जब देख रहे हैं भोजन लीला और कृष्ण अपना भोजन, अपने हाथ का भोजन बालकों को खिला रहे हैं, अपने सखाओं को खिला रहे हैं, और सखाओं के हाथ का भोजन कृष्ण खा रहे हैं, तो बहुत उनको लगा कि बड़ी अशुद्धि हो रही है, तो बड़ा दोष हो रहा है, बहुत दोष हो रहा है। और ऐसे भगवान जिनको बहुत शुद्ध जो सामग्रियां हैं वो अर्पित की जाती हैं और शुद्ध मंत्रों के द्वारा अर्पित की जाती हैं, वो भगवान यज्ञों के भोक्ता भगवान ये सामान्य बालकों का जूठा कैसे खा सकते हैं। तो बड़ा उनको जो है क्या लगा, दोष मालूम पड़ा, ये तो इसमें तो बड़ा दोष है ना। हालांकि ब्रह्मा जी इस तरह से मोहित नहीं हुए, सामान्य जीव की तरह मोहित नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी जो है अपनी श्रद्धा, उनकी श्रद्धा घट रही है और इस कारण से उनको जो है बड़ा मतलब बेचैनी हो रही है कि मेरी श्रद्धा घट रही है, कृष्ण तो वही हैं जो परमेश्वर हैं, आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, लेकिन मेरी श्रद्धा घट रही है कि मेरी श्रद्धा नहीं हो पा रही है कृष्ण की इस लीला में, तो मुझे मेरी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी। तो कृष्ण की कुछ ऐसी लीला में देखूं जिसमें कि मेरी श्रद्धा बढ़े, कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य जब मैं देखूं कि जो मुझसे भी बढ़ करके है, तब मेरी श्रद्धा बढ़ेगी। तब उन्होंने कृष्ण का एक विशेष ऐसी लीला देखने के लिए कि जिसको वे भी मतलब महत्वपूर्ण समझेंगे और जो है वे भी नहीं समझ पाएंगे, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाएंगे और कृष्ण का जो है विशेष महत्व महिमा समझें, इसलिए उन्होंने बालक और बछड़े चुरा लिए, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण और क्षमा करिए, ब्रह्मा और इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा, तो कृष्ण को गलत समझा, क्योंकि कृष्ण की जो लीलाएं हैं बाल लीलाएं और सखाओं के साथ जूठा खा रहे हैं, है ना, तो ये बहुत आनंद देने वाली लीलाएं, बहुत आनंद देने वाली लीलाएं और बहुत ऊंचे स्तर की हैं। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने कि मेरे स्तर की ये लीला नहीं है, मैं इस लीला का रसास्वादन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कैसी लीला चाहिए, ऐश्वर्य। और फिर वो ऐश्वर्य जब देखा ब्रह्मा जी ने, तब जो है वो चकित हुए, तब उन्होंने प्रणाम किया और स्तुति की, प्रार्थना की। तो ये अपने अलग अलग धरातल पर की बात है कि हम किस धरातल पर हैं जिससे कि हम कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन कर सकें। तो इस तरह से इंद्र ने भी जो है कृष्ण को गलत समझा, और जब कृष्ण की ऐसी लीला देखी जिसमें उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण से बढ़कर के शक्तिशाली कोई नहीं है, तब उन्होंने भी समर्पण किया और क्षमा मांगी। तो इंद्र ने भी समर्पण किया, क्षमा मांगी, है ना। तो जो रजोगुण में है तो उनको जो है शक्ति से जो है प्रभाव, वो शक्ति से प्रभावित होते हैं। शक्ति और प्रभाव किसी का हो ज्यादा, महत्व ज्यादा हो तो वो प्रभावित होते हैं। इंद्र भी रजोगुण में है, भोगों में बहुत आ सकते हैं। ब्रह्मा जी भी जो है रजोगुण में है, तो उनको जो है शक्ति देखने की बहुत आवश्यकता है, ऐश्वर्य देखने की बहुत आवश्यकता है, प्रभाव देखने की बहुत आवश्यकता है, तब वो जो है किसी के प्रति वो समर्पित होते हैं और झुकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा और इंद्र ने भी कृष्ण को गलत समझा। तो फिर योगियों, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो फिर योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना जो भगवान को निर्गुण मानते हैं। तो योगी और ज्ञानी वे जो है अगर कृष्ण को कहें कि नहीं भगवान तो निर्गुण है या निराकार है, तो वो कैसे आकार धारण कर सकते हैं और जो है भगवान के आकार को जो है निकृष्ट मानते हैं, निराकार से निकृष्ट मानते हैं। वो क्या सोचते हैं योगी और ज्ञानी, क्या सोचते हैं कि जब निराकार से साकार हुए, भगवान निराकार हैं, वो सोचते निराकार हैं, और निराकार से साकार हुए तो वो आकार चूंकि भौतिक है तो इसलिए ये साकार भगवान जो है ये निकृष्ट है, निराकार की अपेक्षा निकृष्ट है, निराकार निर्गुण है और ये सगुण हो गए। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि अगर वो जो है अगर कृष्ण को गलत समझें तो उनके लिए क्या कहा जाए, उनकी क्या बात कि शिव क्षमा करिए, ब्रह्मा और इंद्र ने भी कृष्ण को गलत समझा। कृष्ण का जो आकार है, कृष्ण का जो रूप है, सच्चिदानंद विग्रह, ये तो हमें शास्त्र साधुओं और आचार्यों से पता चलता है। अपनी बुद्धि से हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। तो इस तरह से अपराध कर बैठते हैं, कृष्ण का अपराध कर बैठते हैं, कृष्ण के शरीर को जो है भौतिक मान करके अपराध कर बैठते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं। अदृश्य का मतलब दिखाई तो पड़ते हैं, वैष्णव जो है दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं। अदृश्य का मतलब उनको सामान्य मालूम पड़ते हैं, कोई वैष्णव को वो देखते हैं तो उनको सामान्य मालूम पड़ता है कि भाई ये भी तो उसी तरह से खाता है, उसी तरह से चलता है, उसी तरह से बैठता है, क्या खासियत, हम खाते हैं जो वो ये भी खाते हैं, खाए बिना हम नहीं रह सकते, खाए बिना ये नहीं रह सकते, तो क्या अंतर है। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं कि चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, सामान्य लोगों की दृष्टि में अदृश्य हैं। तो हमें वैष्णवों की पहचान करनी है, चार कुमारों की पहचान करनी है, कैसे, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, इनके द्वारा हमें पहचान करनी होती है, और नहीं तो हम इनको सामान्य समझेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि चारों कुमार जैसे महापुरुष और वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ अदृश्य रहने का दो अर्थ है, एक तो अदृश्य रहने का अर्थ ये है कि वो दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो तो अपना कुछ विज्ञापन नहीं करते हैं कि मैं शुद्ध वैष्णव हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा दर्शन करो, वो थोड़ी कहते हैं ना। तो अदृश्य ही इस तरह से अदृश्य हैं। और दूसरा अदृश्य का मतलब ये भी कि चार कुमार किसी भी स्थान में जाते हैं, अगर वे दर्शन ना देना चाहें तो कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता, और वो जहाँ भी जाएँ तो उनकी इच्छा है कि वो दर्शन अगर देना चाहें तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन नहीं देना चाहें तो दर्शन नहीं कर सकते हैं, और वो निकल जाएंगे, वो कहीं से भी निकल जाएं और कोई उनको ना देखे, तो ये जो है उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ अदृश्य रहने का ये अर्थ ये भी है। प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। आगे, जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु तो गए तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। देखो अभी मैंने पढ़ा ना कि चैतन्य महाप्रभु दर्शन हेतु गए, उस समय दर्शन हुआ, हरि बोल हरि बोल, कैसा आश्चर्य है, कोई सोच नहीं सकता कैसे अद्भुत ये घटना योग है। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। तो चैतन्य महाप्रभु घर के अंदर हैं, चंद्रशेखर आचार्य के घर के अंदर हैं, और सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठे हैं। सनातन गोस्वामी ने भी किसी को ये सूचना नहीं दी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। वे बाहर बैठ गए, वे बाहर बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं। तो वे चंद्रशेखर आचार्य से कहते हैं कि एक बहुत विशेष भक्त है जो मुझसे मिलने आए हैं, उनको लेके आओ अंदर। तो चंद्रशेखर आचार्य गए तो देखा मैले कुचले कपड़े पहने थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि बहुत दूर से आए थे, वृंदावन से आए थे पैदल चल करके। वृंदावन से नहीं आए थे, राम के लिए से आए थे, क्योंकि वहाँ पर हुसैन शाह ने उनको जेल के अंदर बंद कर दिया था, तो किसी प्रकार से जो है वो जेल से भाग करके आए। तो बहुत बुरी हालत थी उनकी, शरीर भी काफ़ी दिनों से स्वच्छ नहीं हुआ था, वस्त्र भी स्वच्छ नहीं थे, और दाढ़ी भी बढ़ गई थी, तो मुल्ला जी जैसे लग रहे थे कि भाई मुसलमानों के जैसे कोई फकीर, कोई मुसलमान फकीर जैसे मालूम पड़ रहे थे। तो चंद्रशेखर आचार्य जब बाहर निकल करके देखते हैं सनातन गोस्वामी को तो नहीं पहचान पाए, कहाँ वैष्णव, कोई तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, कंठी माला नहीं है, जप माला नहीं है, कहाँ वैष्णव, कहाँ के वैष्णव है ये तो एक मुसलमान, अगर कोई है भाई पवित्र व्यक्ति है तो मुसलमान फकीर हो सकता है। तो आ गए अंदर और चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कोई नहीं है, कोई साधु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसको देखा आपने, बोले कोई मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। हाँ, तो भगवान बोले कि उन्हें वो उनको लेके आओ, सनातन गोस्वामी है लेके आओ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है फिर आज्ञा दी स्नान करने की और वस्त्र बदलने की, सब कुछ जो है चैतन्य महाप्रभु उनको गले से लगाया सनातन गोस्वामी को। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि सनातन गोस्वामी अदृश्य हैं। किसके लिए, चंद्रशेखर आचार्य के लिए अदृश्य हैं। तो अदृश्य किस दृष्टि से, दिखाई तो दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी के पास ऐसी शक्ति थोड़ी है चार कुमारों की तरह कि अदृश्य ही हो जाए वो दिखाई ना पड़े, तो ऐसा तो नहीं है, दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन वेशभूषा से वो जो है अदृश्य हैं, वेशभूषा से उनको कोई नहीं पहचान पा रहा है, चंद्रशेखर आचार्य नहीं पहचान पाए। तो प्रभु लिखते हैं आगे, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान के रूप को समझ नहीं पाते हैं, विशेष रूप से परमात्मा को। तो परमात्मा हृदय में जो विराजमान हैं तो उनका रूप नहीं दिखाई पड़ता। और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हृदय की जो है सर्जरी करके उन्होंने जो है सब कुछ देख लिया, छान लिया, कोई परमात्मा नहीं ना। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तर आत्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, अंगूठे के पोर के आकार के परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष है, डॉक्टरों का भी निष्कर्ष है, सर्जरी करके भी उन्होंने देख लिया कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं कौन, वैष्णव भी और परमात्मा भी। परमात्मा भी प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं और जीव संसार भर में भ्रमण करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है ना, संसार में भ्रमण करता है। ब्रह्मांड भ्रमित जीव, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव। तो जितने जीव सब ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, तो उसके साथ परमात्मा भी तो भ्रमण कर रहे हैं, तो परमात्मा भी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो जीव स्वयं नहीं देख पाता है अपने साथ जो भ्रमण करते हुए परमात्मा को, वो नहीं देख पाता है। और परमात्मा अपनी इच्छा से भ्रमण करते हैं, उनके ऊपर कोई विवश, वो तो विवश नहीं है, अपनी इच्छा से भ्रमण कर, और जीव विवश होकर के भ्रमण कर रहा है, जीव को बलपूर्वक ले जाया जाता है और इधर से उधर, उधर से उधर, और कभी उसको बांधा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और फिर किसी माता के गर्भ में उसको डाला जाता है, फिर दूसरे गर्भ में, फिर इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है जीव। तो जीव जो है बलपूर्वक उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, लेकिन परमात्मा साथ में है, लेकिन वो जीव नहीं देख पाता अपने साथ में परमात्मा को भ्रमण करते हुए। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं, और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते हैं। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित हैं और संसार भर में भ्रमण करते हैं, और वैष्णव भी संसार भर में भ्रमण करते हैं। वैष्णव भी संसार भर में भ्रमण करते हैं। तो वैष्णव कैसे भ्रमण करते हैं? परमात्मा की तरह नहीं भ्रमण करते हैं कि ट्रेन में उनको बैठना पड़े या प्लेन में बैठना पड़े। तो परमात्मा भ्रमण करते हैं तो बिना ट्रेन बिना प्लेन के भ्रमण करते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं वो ट्रेन से और प्लेन से भ्रमण करते हैं। लेकिन भ्रमण तो करते हैं, वैष्णव भी भ्रमण करते हैं, परमात्मा भी भ्रमण करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप भगवान को भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। सृष्टि के स्रोत और वैष्णवों के स्रोत कौन है? भगवान है। स्रोत माने कारण। तो वैष्णवों के भी कारण भगवान है और सृष्टि के भी कारण भगवान है, उनके रूप को नहीं समझ पाते। तो भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो रूप होगा तभी तो, आकार है। निराकार को थोड़ी आप कहेंगे, निराकार अगर हवा की तरह या आकाश की तरह निराकार है तो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर जाते हैं परमात्मा तो कुछ उनका आकार होगा तभी तो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि परमात्मा भ्रमण करते हैं, संसार भर में भ्रमण करते हैं जीव के साथ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं जीव के साथ, और पूरे ब्रह्मांड में भी विभिन्न लोकांतरों में भ्रमण करते हैं जीवात्मा के साथ, और उनका जो रूप है वो सृष्टि का कारण है, उनके रूप से पूरी सृष्टि निकली है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, जब ये सृष्टि के कारण है। अगर भगवान सृष्टि के कारण है और सृष्टि का रूप दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर कारण कैसे हो सकता है बिना रूप का? तो कारण कैसे हो सकता है बिना रूप का? तो वो जो परमात्मा है सबके हृदय में स्थित हैं, वो संसार भर में भ्रमण करते हैं लेकिन कोई उनको नहीं देख पाता है, जबकि वो उनके रूप से ही सब रूप निकले हैं, है ना। तो प्रभुपाद तो बड़ा सरल तर्क देते हैं कि भगवान का रूप क्यों नहीं है, भगवान का रूप क्यों नहीं हो सकता है? जिन्होंने सबको रूप दिया, सभी रूप सभी आकार जिनसे निकले हैं, तो उनका आकार क्यों नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग भगवान के रूप को नहीं समझ पाते हैं, जो सृष्टि के स्रोत हैं और वैष्णवों के स्रोत हैं। आगे अतः ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो भगवान को देख सकता है और ना ही वैष्णव को। अपने भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख सकते, ना भगवान को देख सकते ना वैष्णव को, है ना। और जब भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण के रूप में, भगवान जब आते हैं तो वे भी अपनी मनुष्य लीला के द्वारा भ्रमित कर देते हैं और जीव नहीं समझ पाता है कि ये भगवान है। हालांकि उस समय तो सबको दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा के रूप में तो किसी को नहीं दिखाई पड़ते, और वो हृदय में भी बैठे हुए हैं और अपना काम करते हैं, स्मृति ज्ञान अपोहनम प्रदान करते हैं जीव को। और जीव जब निकलता है शरीर से तो निकलते हैं शरीर से, और जीव जब शरीर में जाता है तो शरीर में वो भी जाते हैं। तो भ्रमण तो करते हैं लेकिन वे तो अदृश्य, उनका रूप नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन कृष्ण जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनका रूप तो दिखाई पड़ता है लेकिन भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख पाते। कृष्ण के अवतार को हम लोग नहीं देख पाते, हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि जब ये मनुष्यों में अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसा अभिनय करते हैं, देवताओं के बीच में देवताओं जैसा अभिनय करते हैं, ऋषियों के बीच में ऋषियों जैसा अभिनय करते हैं, है, और अगर वे ना जनाए तो कोई नहीं जान पाता, उनको नहीं जान पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो भगवान को देख सकता है और ना ही वैष्णव को। फिर कैसे देखना है, प्रभुपाद लिखते हैं उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है, है ना। एक श्लोक है ना इस प्रकार से, सेवोन मुख ही जेहवादौ स्वयं भी विस्फुरतः, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। तो कृष्ण का नाम आदि, नाम आदि का मतलब क्या है, नाम रूप गुण लीला, ये क्रम है। श्री कृष्ण का नाम आदि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ग्रहण नहीं होता है, नाम रूप गुण और लीला। तो नाम रूप गुण लीला जो कृष्ण का है ये इंद्रियों के द्वारा अनुभूति नहीं हो सकती, इंद्रियों के द्वारा अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन सेवोन्मुख ही जिह्वा दो, लेकिन जिह्वा से जो है प्रारंभ करके, जिह्वा से प्रारंभ करके सेवोन्मुख ही, जब सेवा की अनुमुख हो जाए जीव, सेवा में लग जाए जिह्वा के द्वारा, जिह्वा आदि, तो सेवा प्रारंभ होती जिह्वा के द्वारा। तो प्रभुपाद के जिह्वा के दो कार्य हैं, एक कार्य है नाम लेना और दूसरा कार्य है प्रसाद खाना, है ना। तो एक है शब्द निकालना, बाहर निकालना, और एक है अंदर डालना, भोजन अंदर डाला जाता है जिह्वा के द्वारा और शब्द निकाला जाता है। तो शब्द निकालें कृष्ण के नामों का तो ये सेवा है, और डालें कृष्ण प्रसाद जिह्वा में तो ये कृष्ण की सेवा है। तो कृष्ण की दो प्रकार की सेवा जिह्वा के द्वारा होती है। तो इतने से क्या होता है, सभी इंद्रियां सेवा में लग जाती हैं, सभी इंद्रियां सेवा में लग जाती हैं। सेवोन मुखे ही जिह्वा तो स्वयं ही स्फुरति, तो स्वयं ही प्रकट होते हैं कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं स्फुरतः, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करने होती है, तभी क्रमशः वो अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। क्रमशः, क्रमशः अनुभव करता है। तो क्रम क्या क्रम है अनुभव करने का, पहले नाम का अनुभव होगा, फिर रूप का अनुभव होगा, फिर गुणों का, फिर लीला। और लीला की अनुभूति जब होती है कृष्ण की तो वो सर्वोच्च है, और फिर लीला में हम प्रवेश करते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। तो लीला की अनुभूति सर्वोच्च है और नाम की अनुभूति सबसे पहली, है ना। नाम की अनुभूति से रूप की अनुभूति, और रूप से फिर गुणों की अनुभूति, और गुणों की अनुभूति से लीला की अनुभूति। तो क्रमशः प्रभुपाद लिखते हैं तभी क्रमशः वह अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमें ये समझना है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है, इस श्लोक की बात तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो है सिद्धांत इतना दिया है कि आप जीवन भर सोचते रहें। अब हम विचार करेंगे कि ये जो चार कुमार हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र जब हुए तो सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ही थे और कोई नहीं था, है ना। तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर के देखा कि वे अकेले हैं, कोई नहीं है, अकेले हैं। नीचे जल है और जल से कमल की नाल निकली है और उसके ऊपर कमल है, उसके ऊपर वे बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ये देखा, वे कमल की नाल को पकड़ करके नीचे गए, क्या सोच करके कि कारण का पता लगाने, कि कुछ तो कारण होगा, ये कमल जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ इस कमल का कुछ तो कारण होगा, कि कमल तो जड़ वस्तु है, है ना, लेकिन कोई चेतन वस्तु कारण होने चाहिए, है ना। तो ऐसे मूर्ख ब्रह्मा जैसे मूर्ख नहीं थे वैज्ञानिकों की तरह कि जड़ वस्तु से सब कुछ निकला है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि केमिकल से जीवन आया है, रसायनों से जीवन आया है, चेतना जो है रसायनों से उत्पन्न हुई है। तो रसायन तो जड़ है, अचेतन है, अचेतन से चेतन की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ऐसे मूर्ख नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं सोचते कि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और कमल जड़ है और मैं चेतन और मैं कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मूर्ख नहीं है। वो सोचते हैं कोई चेतन होगा, कोई व्यक्ति होगा चेतन जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो कमल के नाल को पकड़ करके पानी के अंदर गए पता लगाने के लिए, हैं, लेकिन पानी कितना गहरा था, वो गर्भ समुद्र का पानी कितना गहरा है, 25 करोड़ योजन गहरा पानी है, एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 25 में 12 से गुणा करें तो 300 करोड़ किलोमीटर, कितना गहरा पानी, 300 करोड़ किलोमीटर, आधा ब्रह्मांड भरा है उस जल से, 300 करोड़ किलोमीटर, तो कौन जाएगा इतने नीचे भगवान का पता लगाने, हैं? वहां पर नीचे गर्भोदक साई विष्णु हैं जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से नहीं जा सकते, इतने नीचे नहीं जा सकते हैं। फिर जल में दोबारा आवाज हुई, तप तप, ब्रह्मा जी ने जो है संकेत प्राप्त किया भगवान का, क्या मतलब कि तुम अगर जानना चाहते हो अपने कारण को देखना चाहते हो मुझे देखना चाहते हो तो क्या करो, तप, क्या करो, तप, दो बार शब्द हुआ तप तप, जल में पानी में कभी आवाज होती है तप तप, जब लहरें टकराती हैं तप तप, तो वो तप 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 की आवाज हुई दो बार तप तप, तब तपस्या किया 1000 दिव्य वर्ष, और एक दिव्य वर्ष 360 वर्ष का होता है, तो इस तरह से 1000 दिव्य वर्ष कितना हुआ, 360 का 1000 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 60,000 वर्ष हो जाएगा, 60,000 वर्षों तक और चित्त पवित्र हुआ और भगवान का जो है दर्शन हुआ, भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक समझाए, ब्रह्मा जी जो है रजोगुण से बिल्कुल रहित हो गए और प्रशांत मनसम, तपस्या के द्वारा भगवान के दर्शन के द्वारा और भगवान के संदेश के द्वारा प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम और पैति शांत रजसम, रजोगुण शांत ब्रह्मा जी का है ना, तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने जो है भगवान से वरदान मांगा कि अब आपकी आज्ञा से मैं सृष्टि की रचना करूंगा, लेकिन रजोगुण बहुत पापी है, ये मुझे जो है दूषित ना करे, क्यों, रजोगुण मेरे अंदर भाव पैदा करेगा कि मैं ईश्वर हूं, मैं स्वतंत्र हूं और सब मेरी प्रजा है, आपका डंडा तो मेरे सिर में मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो भगवान का डंडा नहीं दिखाई पड़ता है, रजोगुण फिर जो है हमारे अंदर हावी हो जाते कि मैं ईश्वर हूं, मैं सर्वोच्च हूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान से कि मुझे जो है ये भावना पैदा हो, ईश्वर भावना आए मेरे अंदर, मैं आपके चरणों में सदा नत रहूं, समर्पित रहूं, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा है ना। तो इस तरह से जो है रजोगुण का जो काम है और लोभ है राग है द्वेष है ये सब नहीं था ब्रह्मा जी में, तमोगुण का प्रमाद है निद्रा आलस्य है ये सब नहीं था ब्रह्मा जी में है ना। उस समय 4 कुमार उत्पन्न हुए थे, 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, जब मन की अवस्था बहुत शुद्ध थी, बहुत शुद्ध थी, जैसे कि गर्भावस्था में जो माता होती है जिस भाव का चिंतन करती है वो भाव बच्चे पर आता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी माता हैं, जो भी कहें पिता हैं माता जो भी है ब्रह्मा जी तो हैं, तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए 4 कुमार, तो ब्रह्मा जी के मन की जो स्थिति थी इतनी शुद्ध स्थिति में 4 कुमारों ने जन्म लिया, तो वो कैसे निकले, बिल्कुल शुद्ध, तो वो शुद्ध सत्व में 4 कुमार उत्पन्न हुए। तो इनके ऊपर 4 कुमारों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, 5 वर्ष की अवस्था हमेशा रहती है, 5 वर्ष की अवस्था कुमार अवस्था कहलाती है, तो 4 कुमार कहलाते हैं, 5 वर्ष से थोड़े से भी आप ऊपर हो गए तो फिर कुमार अवस्था नहीं कहलाएगी, आपको कुमार नहीं कहा जाएगा, हालांकि नाम में तो कुमार होता है, बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नाम कुमार होता है, लेकिन वास्तव में कुमार नहीं है, कुमार तो 4 ही हैं, और अब वो हमेशा कुमार रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका उनके शरीर में परिवर्तन हो। गीता भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में कुमार अवस्था आती है, फिर यौवन अवस्था, फिर जरा अवस्था आती है। तो ये परिवर्तन शरीर में है और आप रोक नहीं सकते। तो मैं भी चाहता था, जब मैं छोटा था तो मैं भी चाहता कि मैं सबसे छोटा बना रहूं, सब क्योंकि मैं सुरक्षित हूं। अगर सबसे छोटा हूं मैं तो सबसे सुरक्षित हूं। जैसे बड़े होते हैं तो मृत्यु के निकट आप जा रहे हैं। तो मैं भी सोचता था, मैं भी चाहता था कि मैं अपने घर में सबसे छोटा अगर हूं तो मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित भी हूं। और जितने आप बड़े होते हैं उतने अधिक आप मृत्यु के निकट जा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं भी बड़ा हो गया तो मैं तो चाहता था कि मैं ना बड़ा हूं, लेकिन मैं बड़ा हो गया। तो शरीर जो है, चूंकि पहले से ही परिवर्तन का जो जो गुण है ये प्रकृति ने बनाया है शरीर में, तो कुमार अवस्था से यौवन अवस्था आती है और यौवन अवस्था से वृद्धावस्था आती है, आप रोक नहीं सकते। जब आप रोक नहीं सकते तो मृत्यु को कैसे रोक सकते हैं? मृत्यु अगला परिवर्तन है। तो आज के वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि मृत्यु को रोका जाए, तो मृत्यु को आप कैसे रोक सकते हैं, है ना। ये छठा परिवर्तन मृत्यु है। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश, ये 6 परिवर्तन है। तो जन्म के परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, वृद्धि के परिवर्तन को रोक नहीं सकते, प्रजनन को रोक नहीं सकते हैं, क्षय को रोक नहीं सकते हैं, तो अंत में जो विनाश है उसको आप कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि उसी प्रकार से जैसे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और आप नहीं बदल रहे, आप वही हैं, उसी प्रकार से मृत्यु में भी आपको दूसरा शरीर प्राप्त होता है और आप नहीं बदलते, आप वही रहते हैं। धीरस तत्र न मोहयति, तो धीर पुरुष इस विषय में जरा भी भ्रमित नहीं होता है, उसे कोई समस्या नहीं समझने। तो थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है समझने में। तो धीर व्यक्ति जो है कठिनाई का अनुभव नहीं करता, मोहित नहीं होता इस विषय में समझने में। लेकिन गीता का ये श्लोक जो है इन कुमारों पर लागू नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा कि शरीर में जिस प्रकार से कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था आती, इनका शरीर कैसा है? हमेशा कुमार अवस्था में रहता है, हमेशा कुमार अवस्था में रहता है। तो कुमार अवस्था में इंद्रियां विकसित नहीं होती हैं, हैं, तो इंद्रियों का जो है वेग भी नहीं होगा, इंद्रियों का वेग नहीं होगा, काम का वेग नहीं होगा। और काम से मुक्त हैं तो क्रोध से भी मुक्त हैं, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध काम से ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह से काम क्रोध से मुक्त हैं, राग द्वेष से मुक्त हैं। तो ये जो 4 कुमार हैं तो ये जो है इन सब चीज़ों से मुक्त हैं। तो ब्रह्मा जी की मन की जो है बहुत शुद्ध अवस्था में चूंकि इनका जन्म हुआ, इस कारण से ये जो है इस प्रकार के भाव में इनका जो है जन्म हुआ। और ये जो 4 कुमार हैं ये जन लोक में रहते हैं, ऊपर के 7 लोक हैं, पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, और महर लोक, जन लोक, और तप लोक, सत्य लोक, है ना। तो भुवर लोक, स्वर लोक, और महर लोक, और जन लोक, कितना नंबर हुआ? अंतरिक्ष है, भुवर लोक है अंतरिक्ष है, और स्वर्ग लोक उसके ऊपर है दूसरा, है? और फिर महर लोक तीसरा, और जन लोक चौथा, है ना। हाँ, तो 7 लोक सब पृथ्वी को मिलाकर के 7 लोक हैं, भूलोक, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, और महर लोक, जन लोक, तो 5वां हुआ, 5वां। फिर उसके ऊपर तपलोक और सत्यलोक, 7। तो जन लोक में निवास करते हैं, जन लोक में जो है विरक्त लोग निवास करते हैं, मुक्त लोग, तपस्वी लोग निवास करते हैं, वहाँ भूख प्यास, सर्दी गर्मी, निद्रा, आलस्य, ये सब नहीं है। और वे लोग भगवान का गुण सुनते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं वे लोग। तो ये सबसे बड़े हैं, 4 कुमार सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी के बाद। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और फिर उनके छोटे भाई शिव जी, उनके बाद अगर कोई उत्पन्न हुआ तो वो शिव जी हैं। और कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जब ब्रह्मा जी क्रोध आया है ना, तो ब्रह्मा जी ने जब उनको आदेश दिया चार कुमारों को कि तुम लोग भी सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी का आदेश गलत नहीं था क्योंकि भगवान का आदेश था, लेकिन जो चार कुमार हैं ये शुद्ध सत्वगुण की अवस्था में थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया ब्रह्मा जी का आदेश। तो प्रभुपाद मान्यता देते हैं, चार कुमारों को भी मान्यता देते हैं कि उन्होंने जो आदेश को ठुकराया तो वो भी गलत नहीं है, ब्रह्मा जी का आदेश भी गलत नहीं है, लेकिन चार कुमारों ने आदेश नहीं माना तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वे सृष्टि के कार्यों से बिल्कुल मुक्त रहना चाहते थे। अगर वो संतान उत्पन्न करेंगे तो फिर उनको चिंता हो जाएगी संतान का पालन करने की और उनको शिक्षा देने की, तो वे जो है इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहते हैं और अपनी कुमार अवस्था से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी मिले, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उनकी बहुत बड़ी है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की, वो जिम्मेदारी उनकी है। बच्चे की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, चार पाँच वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा जी के आदेश को अगर ठुकराया तो उनका कोई दोष नहीं है, और ब्रह्मा जी ने भी समझा कि इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको क्रोध आ रहा, रजोगुण के कारण है क्रोध आ रहा है, तो बुद्धि से अपने क्रोध को नियंत्रित भी किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो नियंत्रित नहीं हुआ और कहाँ से भ्रुकुटि के मध्य से एक बालक के रूप में निकल पड़ा, है ना। तो वो शिव जी हैं, तो चार कुमारों के छोटे भाई हैं शिव जी, है ना। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदेश दिया, तो शिव जी ने जो सृष्टि उत्पन्न की अपने शरीर और मन से भूत प्रेतों की सृष्टि की, तो वो विनाशकारी, तो ब्रह्मा जी ने फिर मना किया कि नहीं नहीं बंद करो, अभी ये सृष्टि मत करो, आप जो है तपस्या करो, ध्यान करो। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाएं हिस्से से मनु को उत्पन्न किया और बाएं हिस्से से शत्रुघ्न को उत्पन्न किया, और तब उन्होंने ये नियम बनाया कि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान होगी, और तब सृष्टि बहुत तेजी से बढ़ी, तब सृष्टि बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि फिर आगे क्रम चलता रहेगा कि फिर वे भी स्त्री पुरुष मिलेंगे, फिर उनसे और बच्चे होंगे, फिर उनसे और बच्चे होंगे, तो एक क्रम जो है फिर मतलब ब्रह्मा जी के बनाने से ये क्रम इस प्रकार से बना, सृष्टि आगे बढ़ी। तो चार कुमारों से छोटे शिव जी हैं, और उनके बाद मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र अपने शरीर और मन से और उत्पन्न किए, जिनमें कि नारद जी हैं, भृगु हैं, दक्ष हैं, वशिष्ठ हैं, क्रतु हैं, पुलह पुलस्त, ये सब जो है उनसे भी छोटे हैं। तो इस तरह से चार कुमार जो है सृष्टि में सबसे बड़े हैं, और ब्रह्मा जी तो फिर भी सृष्टि के कार्य में लगे हैं, लेकिन चार कुमार सृष्टि के कार्यों से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, बिल्कुल मुक्त रहते हैं, और वे विचरण करते हैं तो इसी प्रकार से विचरण करते हैं विरक्त होकर के, कोई संबंध नहीं है भौतिक कार्यों से, उनका कोई संबंध नहीं है, है ना। जबकि नारद जी भी विचरण करते हैं, नारद जी विचरण करते हैं, लेकिन नारद जी का विशेष कार्य है भगवान की लीला में सहयोग देने का, तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे असुरों के बीच में असुरों की तरह भी बातें करते हैं नारद जी, लेकिन चार कुमारों का ये काम नहीं है। नारद जी जो है कंस को ये भी बताते हैं कि तुम जो है विश्वास मत करो, ये जो वसुदेव का जो पहला पुत्र है तुम इसको छोड़ रहे हो, और तुम सोचते आठवें पुत्र से तुमको भय है, तो ऐसा मत समझो, ये सब जो है देवता लोग हैं, ये दुमन से में जितने लोग जन्म ले रहे हैं सब देवता लोग हैं, और जितनी इस पुत्रियां जन्म हो रही हैं ले रही हैं सब देवियां हैं, तो तुम्हारे जो है सब शत्रु ही हैं, सब तुम्हारे शत्रु हैं। और नारद जी इस तरह से बात करते हैं कंस से कि जैसे कंस के पक्ष में ये नारद जी हैं, और वो ये ऐसे बताते हैं कि मैं वहां गया था जहाँ क्षीर सागर के तट में देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ विष्णु जी प्रकट हुए, तो वहाँ भी मैं छिप करके देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, और देवताओं से विष्णु ने आदेश दिया कि तुम लोग जो है यदुवंश में जन्म लो मेरी लीला में सहयोग देने के लिए, और जो देवियाँ हैं वो जो है यदुवंश में जन्म लें स्त्रियों के रूप में तो मेरी लीला में सहायता करें, तो सब तुम्हारे शत्रु हैं और विष्णु भी तुम्हारे शत्रु हैं, और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष का हूँ, और जासूस बनकर के वहाँ जाता हूँ देखने सुनने के लिए सब कुछ। तो नारद जी जो है इस तरह की बातें करते हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए, लेकिन चार कुमारों का ऐसा काम नहीं। चार कुमार अपना बिल्कुल सीधे सीधे वहां जाएंगे ही नहीं जहां इस तरह की बातें होती हैं। कहां पर आए? पृथु महाराज के यज्ञ में आए, है ना। तो केवल शुद्ध संदेश देते हैं बिल्कुल। तो ये अंतर है। तो ये चार कुमार जो है पर्यटन करते हैं, लेकिन उनका जो है कोई उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल ज्ञान देने के सिवा। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न या कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं। हाँ जी,
इसमें जैसे
चालू कर दिया।
इसमें जैसे चार कुमारों ने ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप सृष्टि कीजिए, मतलब अपने आप को जानने के लिए भगवान की सेवा में के लिए अपने आप को वो कर लिया।
ब्रह्मा जी को भगवान ने जब बोला तो भगवान का आदेश सर्वोपरि है, और भगवान के आदेश से कोई भी कार्य हो तो उसी में ही सुरक्षा है। सबसे बड़ी सुरक्षा इसी में है कि भगवान के आदेश का पालन किया जाए। अर्जुन को जो है भगवान आदेश दे रहे, युद्ध करो, अपने संबंधियों की हत्या करो, इसमें ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ा कल्याण। तो जीव का सबसे बड़ा कल्याण और सर्वांगीण सर्वतोमुखी कल्याण भगवान के आदेश के पालन में है। वो हमें ना समझ में आए, हमें लगता है ये ठीक नहीं है, भगवान का आदेश ये है लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो आपका महत्व क्या है और आपके पास दृष्टि कहाँ है देखने की कि ठीक क्या है? भगवान जो आदेश देते हैं वही ठीक है और सबसे ठीक है, और उससे अधिक ठीक कुछ नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान आदेश देते हैं तो भगवान का ही कार्य है, ठीक है ना। हाँ जी प्रद्युम्न प्रिया,
हरे कृष्णा
चालू है।
मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त प्रभु जी ने बताया चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, तो इधर से वक्त सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही पाठ खोला।
जब मैंने पाठ पढ़ा था कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु दर्शन हेतु गए, तो बता रहे हैं कि जब दर्शन खुला तो चैतन्य महाप्रभु का ही दर्शन खुला था उस समय। हरि ओम। आश्चर्य। और कोई हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान के शरीर से कमल भी निकला तो वो जड़ कैसे हुआ? तो भगवान के शरीर से जड़ और चेतन सब कुछ निकलता है। ये पूरी सृष्टि भगवान के शरीर से निकली है, जिसमें जड़ और चेतन। और ब्रह्मा जी का जो शरीर है तो उसमें भी जड़ और चेतन का मिश्रण है। ब्रह्मा जी का भी शरीर भी मतलब पूर्ण रूप से चेतन नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान का शरीर है। तो भगवान के शरीर से जड़ और चेतन दोनों निकलते हैं। जड़ प्रकृति भी भगवान के शरीर से निकली है, जीवात्मा भी भगवान के शरीर से निकली है। ये जो सृष्टि है भगवान की इच्छा से होती है, और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने यही माना कि वास्तव में मेरा जन्म कमल से नहीं हुआ है, मेरा जन्म जो है भगवान से हुआ है, कोई चेतन व्यक्ति है जिससे जन्म हुआ है और ये आसन मुझे मिला है। कमल आसन ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? कमल आसन। तो भगवान ने मुझे आसन दिया है, लेकिन वो कौन व्यक्ति है जिसने मुझे आसन दिया है, कमल का आसन दिया है? मैं कमल से नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं किसी से पैदा हुआ हूँ। तो ये बुद्धि जो है ब्रह्मा जी के पास थी। तो हमें यही सोचना चाहिए कि जड़ शरीर है हमारा, लेकिन जड़ शरीर से चेतन नहीं पैदा होता, चेतना नहीं पैदा होती है शरीर से। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सोचते हैं कि शरीर से ही चेतना पैदा होती है, शरीर पहले पैदा होता है और उससे फिर चेतना, नहीं, चेतना पहले होती है, चेतना से शरीर बनता है, शरीर से चेतना नहीं बनती, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।